हक ने की है दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। परवरदिगार तू हमें भी हदायत की, सालेहियत की, दीन के गलबे की तड़प दे दे और औरों को भी ये तड़प देने वाला बना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर बनी इसराइल खुफिया तदबीरें करने लगे, जवाब में अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर की और ऐसी तदबीरों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। वो अल्लाह की खुफिया तदबीर ही थी जब उसने कहा, ए ईसा अब मैं तुझे वापिस ले लूंगा। रुक कर सोचिए कि जब लोग किसी नेमत की कदर नहीं करते तो अल्लाह वो नेमत वापस ले लिया करते हैं। हम भी सोचें आज के हालात में कि हमने अल्लाह तेरे दीन की कदर ना की, वो वसाइल वो नेमतें वो सलाहियतें जो तूने हमें अता की थी हम उनकी कदर ना कर सके, वो मस्जिदों की बाजमात नमाजें हम उसकी कदर ना कर सके। परवरदिगार हमें तू कदर करने वाला बना दे। या रब्बी अब हमें समझ आ गई है, या अल्लाह तू हमें वापस हमारी वो नेमतें लौटा दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे यानी उनकी माइयत से और उनके गंदे माहौल में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा और तेरी पैरवी करने वालों को कयामत तक उन लोगों पर बालादस्त रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको आखिरकार मेरे पास आना है, उस वक्त मैं उन बातों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हुआ है। जिन लोगों ने कुफ्र और इनकार की रविश इख्तियार की है इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा और वो कोई मददगार ना पाएंगे, और जिन्होंने ईमान और नेकमली का रवैया इख्तियार किया उन्हें अजर उनके अजर पूरे पूरे दे दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम, अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर देना। और खूब जान ले कि जालिमों से अल्लाह हरगिज मोहब्बत नहीं करता। ये आयात और हिकमत से लबरेज तस्करे हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की सी है कि अल्लाह ने इसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा और वो हो गया। यानी हजरत आदम भी बशर थे और हजरत ईसा भी बशर, हजरत आदम भी बिन बाप के थे और हजरत ईसा भी बिन बाप के। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह जो चाहे कर डालने की कुदरत रखता है। ये असल हकीकत है जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें बताई जा रही है और तुम उन लोगों में शामिल ना हो जो इसमें शक करते हैं। ये इल्म आ जाने के बाद अब जो कोई इस मामले में तुमसे झगड़ा करे तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कहो कि आओ हम और तुम खुद भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं और खुदा से दुआ करें कि जो झूठा हो उस पर खुदा की लानत हो। ये बिल्कुल सही वाकयात हैं और हकीकत ये है कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और वो अल्लाह ही की हस्ती है जिसकी ताकत सबसे बाला और जिसकी हिकमत निजामे आलम में कार फरमा है। बस अगर ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़े तो इनका मुफसिद होना साफ खुल जाएगा और अल्लाह तो मुफसिदों के हाल से वाकिफ ही है। हजरत ईसा के हवाले से सही अहादीस से पता चलता है कि आप क्यामत के करीब दमिश्क की मस्जिद के सफेद मीनारे पर नजूल फरमाएंगे। उनके एक तरफ जिब्राइल होंगे और दूसरी तरफ मीकाईल। उस वक्त मुसलमान कई तरह के फितनों में मुब्तला होंगे जिनमें सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा, और आप दज्जाल को कत्ल करेंगे, मुसलमानों की इमदाद फरमाएंगे और आप कोई नई शरीयत नहीं लाएंगे बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर रहेंगे, और आपके दौर में इस्लाम का बोलबाला होगा और बाद अज़ां आप अपनी तबई मौत मरेंगे और इस दौरान आप यहूदियों को चुन चुन कर मारेंगे, हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा तो वो पत्थर भी बोल उठेगा कि यहाँ एक यहूदी मौजूद है। अब आगे आयात हम देखते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहो ए अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। ये इसमें हिकमत का नुक्ता है, इख्तलाफ से बात को शुरू ना कीजिए, उस बात से दावत का आगाज करें जो दूसरे को अपील करे, दूसरे को आपसे करीब करे ताकि वो आपकी बात को सुने और समझे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करें, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब ना बना ले। हजरत अदी बिन हातिम जो कि एक ईसाई थे फिर मुसलमान हुए, फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो मैंने बारगाहे रसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम इनकी इबादत तो नहीं किया करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि वो जिसको हलाल ठहरा दे, वो जिस हलाल चीज को चाहते हराम कर देते और जिस हराम को चाहते हलाल कर देते, और तुम उनके हर हुक्म की पैरवी करते? तो मैंने अर्ज किया कि हाँ ऐसा तो हम किया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुआ दा, यानी यही तो है, यही तो रब बनाना है कि जिसके कानून को आप अथॉरिटी माने, कि जो वो कह दे वो हलाल है, जो वो कह दे वो हराम है, जो वो कहे कर लिया जाए, जिसको जिससे वो मना करे उससे बाज आ जाया जाए। तो ये अथॉरिटी तो सिर्फ अल्लाह की है, और अगर अल्लाह के मुकाबले में किसी और को ये अख्तियार दे दिया जाए तो ये उसको रब बनाना है। अल्लाह हमें ऐसे शिर्क से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस दावत को कबूल करने से अगर वो मुंह मोड़े तो साफ कह दो कि गवाह रहो हम तो मुस्लिम हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहिम के बारे में हमसे क्यों झगड़ा करते हो? तो रात और इंजील तो इब्राहिम के बाद ही नाजिल हुई हैं। फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तुम लोग जिन चीजों का इल्म रखते हो उनमें तो खूब बहसें कर चुके, अब इन मामलात में क्यों बहस करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी इल्म नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना यहूदी था ना ईसाई, बल्कि वो तो एक मुस्लिम यकसू था और वो हरगिज मुशरिकों में से ना था। और इब्राहिम से निस्बत रखने का सबसे ज्यादा हक अगर किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने इसकी पैरवी की, और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस निस्बत के ज्यादा हकदार हैं। अल्लाह सिर्फ उन्हीं का हामी और मददगार है जो ईमान रखते हों। वल्लाहु वलीयुल मोमिनीन, सब अहले ईमान के लिए खुशखबरी है कि वलायत या अल्लाह का दोस्त होना, ये ऑप्शन तमाम मोमिनों के लिए खुली है। जो भी ईमान रखता हो वो अल्लाह का दोस्त है। इन आयात में आप देख रहे हैं कि हजरत इब्राहिम से निस्बत का दावा कर रहे हैं। मुशरिकीन भी हजरत इब्राहिम से निस्बत का दावा करते थे, यहूदी और ईसाई भी हजरत इब्राहिम से निस्बत का दावा करते हैं। तो आप सोचें कैसा किरदार था हजरत इब्राहिम का। क्या हमारा किरदार ऐसा है कि दुनिया हमसे ताल्लुक पर फख्र करे जैसे हजरत इब्राहिम से निस्बत पर फख्र किया करते थे लोग? आज भी लोग उनको रिगार्ड करते हैं। और हम ये भी देख लें कि सच्ची निस्बत जो है वो रिश्तेदारी से नहीं मिलती, ना नस्ब से मिलती है, ना वतन से मिलती है। असल निस्बत के हकदार वो हैं जिन्होंने दावत को कबूल कर लिया। और हजरत इब्राहिम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं, हनीफम मुस्लिमा, मुस्लिम यकसू था, वो इधर उधर लुढ़कने वाला नहीं था, वो कभी अल्लाह की मर्जी और कभी बंदों की मर्जी और कभी अपनी मर्जी नहीं, वो मुस्लिम यकसू था। जिस तरह सूरज मक्खी का फूल होता है ना, कि जैसे जैसे सूरज जो है वो चलता जाता है उस तरह से सूरजमुखी का रुख भी बदलता जाता है, सूरज ही की डायरेक्शन में होता जाता है। तो बस यही चीज मुस्लिम यकसू हनीफियत, कि जैसे अल्लाह का हुक्म मैं वैसी बन जाऊं, अल्लाह मुझे और आपको भी ऐसा ही बना ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान लाने वालों, अहले किताब में से एक ग्रोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें राह रास्त से हटा दे, हालांकि दर हकीकत वो अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे। जो किसी के लिए घड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। वो इन्हें राह रास्त से हटाना चाह रहे थे और वो दरअसल अपने आप को गुमराही में डाल रहे थे, मगर इन्हें इसका शऊर नहीं। ए अहले किताब, क्यों अल्लाह की आयात का इनकार करते हो? सवाल का अंदाज है ताकि सोचने पर मजबूर हो। अल्लाह ताला कहते हैं, तुम खुद उसका मुशाहिदा कर रहे हो। ए अहले किताब, क्यों हक को बातिल का रंग चढ़ाकर मुश्तबे बनाते हो? क्यों जानते बूझते हक को छुपाते हो? अहले किताब में से एक ग्रोह कहता है कि इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ नाजिल हुआ है इस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इससे इनकार कर दो, शायद इस तरकीब से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। अच्छा, ये तो था यहूदियों का तरीका और उनका प्लान। क्या प्लान था कि हम में से कोई दिन के पहले हिस्से में ईमान ले आए और शाम को हो इनकार कर दे, और हम लोगों को ये बता दें कि हमने तो उनका दीन इख्तियार किया था और देख लिया ये लोग ठीक नहीं? ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती हरबा है। किसी को अगर भगाना हो तो कह दे कि हमने तो ये ग्रुप ज्वाइन किया था और फिर छोड़ दिया, तो ताकि लोगों के दिल में शक डल जाए कि हाय इन्होंने क्यों छोड़ा ये चीज। बहरहाल मुझे और आपको अपना जायजा लेने की जरूरत है कि कहीं हमारा कोई कॉल, हमारा कोई अमल लोगों को दीन से दूर करने का बाइस तो नहीं बन रहा। आगे देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नीज ये लोग आपस में कहते हैं कि अपने मजहब वाले के सिवा किसी की बात ना मानो। ए नबी, इनसे कह दो कि असल में हदायत तो अल्लाह की हिदायत है और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब के हजूर पेश करने के लिए तुम्हारे खिलाफ कवी हुज्जत मिल जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो फजल और शर्फ अल्लाह के अख्तियार में है, जिसे चाहे अता फरमाए। दीन और शरीयत किसी की मिरास नहीं है, हक किसी खास ग्रोह के साथ मखसूस नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे अपने दीन की समझ अता फरमाए, जो उसके दीन को समझना चाहे, उस पर चलना चाहे और उसका काम करना चाहे, अल्लाह उसे चुन लेता है। अल्लाह वसीउ नजर है और वो सब कुछ जानता है, अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है। यहाँ रुक कर अपना नाम लेकर दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमें चुन ले, अल्लाह तू मुझे अपने दीन के काम के लिए चुन ले, अल्लाह तू मेरी औलाद को अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले, हमारी नस्लों को अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले, अल्लाह हमारे जोज को अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। और उसका फजल बहुत बड़ा है, इंसानों के पास लिमिटेड है मगर अल्लाह के पास अनलिमिटेड है। उस रब से जुड़ जाए, उस रब से मांगे, वो देने वाला है। अहले किताब में कोई ऐसा है कि अगर तुम इसके एतमाद पर मालो दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा। आप यहाँ रुक कर सोचें, अल्लाह ताला अपने दुश्मनों की खूबी का जिक्र कर रहे हैं। मैं अपना रवैया देखूं, हम अपना जायजा लें कि हमें जो लोग पसंद नहीं होते उसमें हजार खूबियां भी हों तो हम नहीं मानते, और जो पसंद होते हैं उसमें हजार खामियां भी हों तो हमें नजर नहीं आती। ऐसा ना करें। जिसके अंदर खूबी हो, वो अपना हो या पराया हो, वो दोस्त हो या दुश्मन हो, उसकी खूबी को तस्लीम कीजिए। और अगर कोई खराबी है, वो अपना है या पराया है, उस खराबी को भी तस्लीम कर लीजिए ताकि हम उससे बच सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी का हाल ये है कि अगर तुम 1 दिनार के मामले में भी इस पर भरोसा करो तो वो अदा ना करेगा, इल्ला ये कि तुम उसके सर पर सवार हो जाओ। उनकी इस अखलाकी हालत का सबब यह है कि वो कहते हैं, उम्मियों यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हम पर कोई मुआखिजा नहीं। ये तो यहूदियों का मामला है, वो क्या समझते थे कि जो हमारे दीन के लोग नहीं है हम उनके साथ जो चाहें करें, उनके साथ झूठ बोलें, उन्हें धोखा दें, उनकी अमानतों में खयानत करें, उनके साथ ज्यादती करें, ये हमारे लिए जायज है। लेकिन नहीं, ये हमारा दीन हमें इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देता कि हम किसी काफिर को धोखा दें या उसके साथ झूठ बोलें या उसके साथ ज्यादती करें या उसकी अमानतों में खयानत करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़माने जाहिलियत की तमाम चीजें मेरे कदमों तले हैं सवाए अमानत के वो हर सूरत में अदा की जाएगी, चाहे किसी नेकोकार की हो या बदकार की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये बात वो महज झूठ घड़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई। आखिर क्यों इनसे बाजपुरस ना होगी, जो भी अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बच कर रहेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा ही बना दे, अल्लाह हमें अपनी पसंद का बना ले। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, तो इनके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क्यामत के रोज ना उनसे बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए तो सख्त दर्दनाक सजा है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, परवरदिगार तो हमें इन लोगों में शामिल ना करना। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस तरह जुबान का उलट फेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वो पढ़ रहे हैं वो किताब ही की इबारत है, हालांकि वो किताब की इबारत नहीं। वो कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खुदा की तरफ से है, हालांकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। वो जान बूझ कर झूठ बात अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कहें कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। और ये भी कि किताब तक अवाम की रसाई ही नहीं थी, जो उनके यहूदियों के आलिम कह दें कि ये अल्लाह का हुक्म है उसको मान ले, और जिसको वो हराम कह दें उसको वो हराम मान ले। तो कहीं हमारा ये हाल तो नहीं है कि हम ना कुरान को समझ कर पढ़ते हों, ना हदीस का इल्म सीखते हों, बस जो लोग कह दें हम, जिसको वो सही कह दें उसको हम सही कह दें, जिसको वो गलत कह दें उसको हम गलत कह दें। कुरान सीखिए, हदीस सीखिए, जानिए, ऐसा ना हो कोई आपको गुमराह कर दे, अल्लाह ना करे। हम बड़े दुनिया के मामलात में होशियार बनते हैं, दीन के मामले में धोखा खाने वाले ना बने। अल्लाह ताला फरमाते हैं किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो इसको किताब और हुक्म और नबुवत अता फरमाए और वो लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय तो मेरे बंदे बन जाओ, वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी बनो। अल्लाह वाला लोगों को अल्लाह से जोड़ेगा, अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा करेगा, अल्लाह का खौफ दिल में बिठाएगा। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसा कि इस किताब की तालीम का तकाजा है, जिसे तुम पढ़ते हो पढ़ाते हो, वो तुमसे हरगिज ये ना कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफर का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? ये कैसे मुमकिन है? याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि आज हमने तुम्हें किताब और हिकमत और दानिश से नवाजा है, कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी तालीम की तस्दीक करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुमको उस पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करनी होगी। ये इरशाद फरमाकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी तरफ से अहद की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। इसके बाद जो अपने अहद से फिर जाए वही फासिक है। अब क्या ये लोग अल्लाह की इताअत का तरीका छोड़कर, अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आसमान और जमीन की सारी चीजें चारों ना चार अल्लाह ही की ताबे फरमान है और उसी की तरफ सबको पलटना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस तालीम को मानते हैं जो हम पर नाजिल की गई, उन तालीमात को भी मानते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलादे याकूब पर नाजिल हुई थी, और उन हदायात पर भी ईमान रखते हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई। हम उनके दरमियान फर्क नहीं करते और हम अल्लाह के ताबे फरमान मुस्लिम हैं। इस फरमाबरदारी के सिवा जो शख्स कोई और तरीका इख्तियार करना चाहे, इसका वो हरगिज तरीका कबूल ना किया जाएगा और आखरत में वो नाकामो नामुराद रहेगा। असल नुकसान तो आखरत का नुकसान है। वो चीज दीन से हट कर जो कोई भी तरीका इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। एक मर्तबा हजरत उमर तौरात के औराक पढ़ रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देख कर गजबनाक हुए और फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मूसा भी जिंदा होकर आ जाएं और तुम मुझे छोड़कर उनके पीछे लग जाओ तो यकीनन गुमराह हो जाओगे। ये मसनद अहमद की रिवायत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को हदायत बख्शे जिन्होंने नेमत ईमान पा लेने के बाद फिर कुफर इख्तियार किया, हालांकि वो खुद इस बात की गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल हक पर है और इनके पास रोशन निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को तो हदायत नहीं दिया करता, उनके जुल्म का सही बदला यही है कि इन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की फिटकार रहे। इस हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सजा में तख्फीफ होगी और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता वो लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपने तर्ज अमल की इसलाह कर ले। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह कितना मोहब्बत करता है अपने बंदों से। अल्लाह अपने बंदों की हर मौके पर, जब भी वो जिंदगी के किसी हिस्से में भी पलट आए, अल्लाह उसे अपने दामने रहमत में जगह देते हैं। ये दुनिया की जिंदगी कितनी कीमती है कि तौबा इसी जिंदगी की काबिले कबूल है, ना जुर्माना ना चलान, ना अल्लाह शर्मिंदा करता है और अल्लाह ताला अपना लेता है। अल्लाह तो ऐसे भी तौबा कबूल करता है कि जमीन को भुला देता है, फरिश्तों को भुला देता है, अल्लाह के सिवा उसका कोई शाहिद नहीं रहता। और अल्लाह ताला जब उसे उसका एक एक गुनाह कयामत के दिन याद दिलाएंगे और फिर अपने बंदे से कहेंगे, जब उसे माफ करना चाहेंगे, कि मैंने इन सारे गुनाहों के बदले तुम्हें नेकियां दे दी, और वो बंदा एकदम से कहेगा फला मेरा गुनाह, तो परवरदिगार उसका वो अपने उन गुनाहों का भी जिक्र कर देगा जिनका जिक्र अल्लाह ने नहीं किया होगा। अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह बंदों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, बस अल्लाह ने शर्त ये लगाई है कि तौबा करके अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लो। अल्लाह हमें तौबा करने वाला और अपने तर्ज अमल की इस्लाह करने वाला बना दे। मगर जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया, फिर अपने कुफर में बढ़ते चले गए, ईमान लाने के बाद कुफर का रवैया, ईमान लाने के बाद नमाज छोड़ देना, पर्दा छोड़ देना, हर वो चीज पसंद है जो कुफर को जेब देती है, उन काफिर अच्छे लगे, उनका कल्चर अच्छा लगे, उनकी रस्में अच्छी लगे, उनका लिबास अच्छा लगे, ईमान लाने के बाद झूठ, ईमान लाने के बाद करप्शन, ईमान लाने के बाद धोखा, ईमान लाने के बाद कुफर का रवैया जो अख्तियार करें, फिर अल्लाह उनको उनके कुफर में ही बढ़ाता है और उनकी तौबा भी कबूल ना होगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। यकीन रखो, जिन लोगों ने कुफर अख्तियार किया और कुफर ही की हालत में जान दी, उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए जमीन भर भी सोना फिदिया में दे, तो उसे कबूल ना किया जाएगा। इस दुनिया की जिंदगी में जिस चीज को सबसे ज्यादा कीमती समझा, सोना, अगर वो जमीन भर सोना भी हो, कयामत के दिन वो कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा तैयार है और वो अपना कोई मददगार ना पाएंगे। परवरदिगार तू हमें माफ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हम तौबा करते हैं अपने उन सारे गुनाहों से जो हमने तन्हाई में किए, परवरदिगार तू माफ कर दे। या अल्लाह, हम अपने उन सारे गुनाहों से तौबा करते हैं जो हमने किसी महफिल में किए, परवरदिगार तू माफ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे वो गुनाह भी माफ फरमा जिन्हें हम जानते हैं लोग नहीं जानते, परवरदिगार तू हमारे वो गुनाह भी माफ फरमा जिन्हें तू जानता है और हम भी नहीं जानते। परवरदिगार तेरे बंदे बनना चाहते हैं तू अपना बना ले, तेरा दीन सीखना चाहते हैं तू सिखा दे, परवरदिगार तेरे दीन की खिदमत करना चाहते हैं तू अपने काम के लिए चुन ले। या रब्बी, हम बहुत कोताहियां करते हैं, हमसे बहुत गलतियां सरजद होती हैं, परवरदिगार तुझसे तेरी रहमत, तुझसे तेरा फजल मांगते हैं। हमारे पास कोई अमल की ऐसी पूंजी नहीं है जो तेरी जनाब में पेश कर सके, परवरदिगार परवरदिगार तो अपने फजल से बख्श दे। या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह, इस नेकी को अपनी बारगाह में परवरदिगार तू कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन, इस कुरान के पढ़ने और पढ़ाने को या अरहमुर राहिमीन कयामत के दिन हमारे हक में हुज्जत बना दे। या रब्बी, जो जो इस काम में ताउन कर रहे हैं, या रब्बुल आलमीन, उन सबको उसका सिला अता फरमा, बेहतरीन अजर अता फरमा। जो इसको फैला रहे हैं या रब्बुल आलमीन, जो लोगों को पहुंचा रहे हैं या रब्बुल आलमीन, तो उन्हें भी इसका अजर अता फरमा और हम सब की कोताहियों से दरगुजर फरमा। बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान है। आमीन या रब्बुल आलमीन।